ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम सत्वास्कंद 15 अध्याय 45
यावत् नृकाय रथमात्मवशोपकल्पम् धत्ते गरिष्ठचरणार्चया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वानंद तुष्ट उपशांत इदं विजयात् जावत् नृकाय रथमात्म वशोपकल्पम् धत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः स्वानन्दतुष्ट उपशान्त इदं विजयात्
पढ़िए अनुवाद पढ़ेंगे पढ़ लीजिए प्रभु जी पढ़ लेंगे बहुत बड़ा तात्पर्य है
शब्दार्थ यावत् जब तक नृकाय यह मनुष्य शरीर रथम रथ रूप आत्मवश अपने नियंत्रण पर आश्रित उपकल्पम जिसमें अनेक अधीन अंग हैं धत्ते धारण करता है गरिष्ठ चरण श्रेष्ठ गुरुजनों के चरण कमल अर्चनया सेवा करके निशातम तेज की हुई ज्ञानसिम ज्ञान रूपी तलवार या हथियार अच्युतबल कृष्ण के दिव्य शक्ति से दधत पकड़कर अस्त्रशस्त्र जब तक शत्रु पराजित न हो जाए तो आनंद तुष्ट दिव्य आनंद से पूर्णतया संतुष्ट उपशांत समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध चेतना इदम इस शरीर को विजाह्यात् त्याग दें। अनुवाद जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा सात सामान सहित जो पूर्णतया अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज करता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। तात्पर्य भगवान ने भगवत गीता में कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है नृदेहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयुनाकुले न नभस्वेत तेरितम उमम भवाद्भिम न तरेत आत्महा। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है, गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है, मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। चूंकि गुरु ही कर्णधार हैं, अतएव गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। यहाँ पर अच्युत बल शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतएव उसे प्रसन्न करने के लिए शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से बल मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वह बल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाएगा जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को भी तेज करना है, तभी उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है, और शत्रु को जीत लेने पर वह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है, तब तक इसका पूरा पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने, भगवत धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत होने में है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह किसी चीज के लिए न तो शोक करता है न इच्छा करता है, वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र में से जैसा निर्विशेषवादी कहते हैं, माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता, उसे भक्ति का पद प्राप्त करना होगा। भक्ता माम अभिजानाति यावत् चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्ववतो ज्ञात्वा विशेष तदंतरम्। केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथार्थ रूप में समझा जा सकता है, और जब ऐसी भक्ति से कोई परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। जब तक भक्ति की अवस्था और गुरु तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह नीचे गिरने तथा फिर से भौतिक शरीर धारण करने की संभावना बनी रहती है। अतएव कृष्ण भगवत गीता में बल देकर कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम इति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यहाँ पर तत्त्वतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वास्तव में ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा। जब तक कोई गुरु की कृपा से कृष्ण को वास्तव में समझ नहीं लेता, तब तक वह अपने भौतिक शरीर को त्यागने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जैसा कि कहा गया है, आरूढ़ कृच्छेन पदम परम पदम तद पतंती अधो नारजुष्टम अंग्रह। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने में लापरवाही करता है तो केवल ज्ञान के बल पर भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। यदि उसे ब्रह्म में तादात्म्य की अवस्था है तब भी प्राप्त हो जाए तो भी भक्ति के बिना वह नीचे गिर सकता है। उसे फिर से भवबंधन में गिरने के खतरे से सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई प्रत्याभूति है तो यही है कि भक्ति अवस्था को प्राप्त हुआ जाए जहाँ से कभी भी गिरना नहीं पड़ता। तब तक भौतिक जगत में कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है, तब वह भौतिक जगत के कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण भावना अमृत की परंपरा में चले आ रहे प्रामाणिक गुरु से संपर्क करे, क्योंकि उन्हीं की कृपा तथा उपदेश से कृष्ण से बल प्राप्त हो सकेगा। इस तरह भक्ति करने से जीवन का चरम लक्ष्य विष्णु के चरण कमल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में ज्ञानासिम अच्युतबल्ल शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञानासिम अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद हैं, ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत हैल सेई बलराम हैल निताई। यह बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है, और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। वे विशेषकर इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापी तापी यथाचिल हरिनाम उद्धारिल, उनका हथियार संकीर्तन या हरिनाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके तथा बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायात्ममा बलहीने न लभ्यो न च प्रमादा तपसो वाप्तलिंगात एतेरुपार्यतते यसुविदाम तस्यैव आत्मविशेष्ट ब्रह्मधाम। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नितायर करुणा हैबे व्रजे राधा कृष्ण पाबे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा होगी तो राधा कृष्ण के चरण कमल सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। से संबंध नाही यार वृथा जन्म गेलतार विद्याकुले की करीबेतार। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता है तो अब भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी ये संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण भावना अमृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए।
हरे कृष्ण, बल चाहिए हम लोग को। कल सुन रहे थे ना, बहुत शत्रु है, पालन पोषण करके हम रखा है। हम खाने पीने के लिए रहने के लिए बंदोबस्त उन लोग का करते हैं शत्रु के लिए, वो हमको मारेंगे फिर उनके लिए हमारा व्यवस्था है इस शरीर में। कल सुन रहे थे हम राग द्वेष आदय, राग द्वेषस्य लोभस्य शोक मोह भयो मदः। भगवत भक्ति की प्राप्ति पर या वैकुंठ जाने पर जो बाधक है, कल हम सुन रहे थे कितना बड़ा बाधक है ये शत्रु है, उन लोगों को परास्त कैसा करना चाहिए, क्या उपाय है, आज नारद मुनि उल्लेख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तात्पर्य ने प्रभुपाद कितना लिखा है, तो व्याख्या करेंगे तो 3-4 दिन लगेगा, तात्पर्य लेकर व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा। और इसी में ही सारातिसार शिक्षा ही है सप्तम स्कंद में, जावत नृकाय रथमात्म वसुपकल्पम धत्ते गरिष्ठ चरणार्चना निसातम। यही शब्द सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण है, गरिष्ठ चरण अर्चना। जो बल मिलता है ना भक्ति योग में, ये गरिष्ठ का चरण, गुरुजी का चरण, गुरु परंपरा में जो आगत गुरुवृंद का चरण सेवा करने से भक्त बलवान होता है। ये एक बुद्धि चाहिए भक्ति योग में। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को ये बोल रहे हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदनः। भक्ति योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, और ये व्यवसायत्मिका बुद्धि के आधार पर ही गुरु जी का सेवा होता है। और जिन लोग का बुद्धि है तो भक्ति योग में, लेकिन बुद्धि बहुत शाखा है, वो लोग टिक नहीं पाएंगे इधर। शास्त्र ये बोलता है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, नहीं नहीं क्या कौन बोल रहा है ये हमारा मतलब नहीं है। शास्त्र में जो मत है, शास्त्र का मत की आधार को लेकर चलना हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? शास्त्र में जो मत है वो कर्माधिकारी के लिए भी है, ज्ञानाधिकारी के लिए भी है, भक्ति अधिकारी के लिए भी। अधिकार भिन्न भिन्न है ना। जैसे देखिए अर्जुन पहला अध्याय में जो बोल रहे थे क्या झूठ है? गीता का जो पहला अध्याय में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, जो प्रवचन दिया है, क्या झूठ है? क्या बिल्कुल सत्य है? ये वेद का प्रवचन, गुरुजन को नहीं मरना चाहिए, लुप्त पिंडोद का क्रिया, वर्ण संकर, ये सब सत्य है, लेकिन अर्जुन के लिए सत्य नहीं। अर्जुन के लिए क्या कर्तव्य है, कौन सा अधिकारी है? कृष्ण को पता है, गुरु जी को पता है, उनके लिए भलाई यही है युद्ध करने में। लेकिन अर्जुन क्या चाह रहे थे? मैं सन्यासी बनूंगा। अरे सन्यासी बनना है या गृहस्थ बनना है या फाइटिंग करना है? तुम सन्यासी बनेंगे और सुभद्रा को कौन शादी करेगा? पता किसको है? कृष्ण को है ना। अधिकार निर्णय करना सिर्फ गुरुजी को पता है। हमारा बुद्धि में जो इसी में मेरा भलाई होगा, हमारा भलाई हमको पता नहीं। अगर हमारा अधिकार हम खुद को पता चल जाता है तो इसका मतलब हम ही गुरु हो गए। सिर्फ युद्ध करना ही है, इसीलिए कितना अध्याय चला गीता में? 18 चैप्टर, 18 अध्याय चला, युद्ध करो। और लास्ट अध्याय में, अंतिम अध्याय में, करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मय अच्युत। इतना सुनने का बाद आप बोलते हैं ठीक, मेरा अभी अधिकार आ गया, मैं युद्ध करूंगा। तो हम लोग शास्त्र पढ़कर कैसे समझ सकते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं वृंदावन में भजन करूंगा या घर में गृहस्थ बनूंगा या खेतीबाड़ी करूंगा या फैक्ट्री बनाऊंगा? कैसे पता चलेगा हम लोग को? खुद का अधिकार खुद को पता नहीं है, गुरुजी को पता है। इसीलिए ये जो शत्रु है ना भक्ति पथ में, राग द्वेष लोभ क्रोध, उनको परास्त करने के लिए एक असी चाहिए, खड्ग चाहिए, तलवार चाहिए। अर्थ है तो तलवार आप, लेकिन तलवार फिर क्या होना चाहिए? धार रहना, तेज रहना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण तलवार होना चाहिए। धते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम, निशातम शब्द का अर्थ यही है, तेज करना चाहिए। तेज तलवार है ना, चलाने के लिए भी आसानी है, मारने के लिए भी आसानी है। हमारा तेज नहीं होता है, तेज तलवार नहीं है। तलवार तो है, जैसे तलवार कुछ दिन आप रख लेंगे ना, इसमें जंग हो जाता है, कोई काम को नहीं आता है। गुरु ग्रहण करने का बाद यही करना है, गरिष्ठ चरण अर्चनया। गीता में हम सुन रहे थे ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए गुरु जी की सेवा करने के लिए और भक्ति योग में रहने के लिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही बुद्धि है। क्या है वो? प्रभुपाद जी हर समय जब लिखते हैं ना, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। गुरुदेव का आदेश पालन करना ही आध्यात्मिक जीवन में सफल रहस्य है, यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हर समय प्रभुपाद यही, आप देखिए तात्पर्य में, कभी गीता में पढ़िए, कभी भागवत में पढ़िए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही सफलता है। गरिष्ठ चरण अर्चनया, गुरु जी का सेवा करना है। भगवान ने यहां तक कि दसवां स्कंद में गुरु तत्व सुदामा का पास बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी में गुरुदेव का चर्चा चला। नाहं विद्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमे नवा नाहं इज्जा, मैं ब्रह्मचर्य धर्म में इतने संतुष्ट नहीं होता। कभी कभी लोग सोचते हैं ना मैं शादी नहीं करूंगा, अरे शादी नहीं किया तो क्या किया, कितना आदमी घूमते हैं इधर उधर शादी नहीं करते हैं, क्या वो बड़ा हो जाते हैं? शादी नहीं करना हमारा मतलब नहीं है, अरे शादी करना भी ये मेरा मतलब नहीं है, भक्ति योग में इसी से मतलब नहीं है। नाहं इज्जा प्रजातिभ्या, प्रजाति कोई संतान जन्म करता है, गृहस्थ धर्म में है। ठाकुर जी बोलते नहीं नहीं कोई ब्रह्मचारी धर्म में है मैं इसमें भी खुशी नहीं हूं, कृष्ण बोल रहे खुद, कोई गृहस्थ है उनका ऊपर खुशी है क्या? तपसो कोई बानप्रस्थ है नहीं, उपसमान कोई सन्यासी धर्म में है डंडा लेकर घूमता है इधर उधर नहीं, तो किसका ऊपर आप खुशी है? तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, चाहे कोई भी हो, अहम सर्वभूतात्मा तुष्य, मैं सब जीव का अंदर में हूं, लेकिन मैं वही भक्त पर, वही जीव पर, वही मनुष्य पर तुष्ट हो जाता हूं जो गुरुदेव का सेवा करता है। गुरु शुश्रूषया यथा, गुरुदेव का सेवा जो करता है, इसलिए गुरुदेव जी का, गुरु का सेवा आप करना, गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए एक बुद्धि चाहिए। विषय प्रवणता हमारा है, समझते ना संस्कृत में शब्द है विषय प्रवण, इसका मतलब है तो हम सेवा कर रहे हैं, हमारा बुद्धि विषय का ऊपर हर समय टिकता है, पकड़ता है बुद्धि, इसमें क्या सुख मिलेगा, इसमें क्या सुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा। ठाकुर जी सेवा करते हैं ना, ढूंढते हैं सुख कहां मिलेगा, सुख है उधर लेकिन विषय सुख ढूंढते हैं। लेकिन व्यवसाय में का बुद्धि का मतलब ये नहीं है, कभी कभी हमारा ये चिंता आ जाता है ना, तो इस कान में रहेंगे ना, इस कान में रहेंगे, इतना दिन भजन कर रहे ठाकुर मिलेगा, शुद्ध भक्त मिलेगा, तो कोई कोई भक्त लोग ने ऐसा तो बोल देते नहीं नहीं इस कान में शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा, क्या उनका पास कोई कॉल आया है कृष्ण से, उनको पता है शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा, ये जो शुद्ध भक्त का परंपरा है, शुद्ध भक्ति का परंपरा है, नहीं मिलेगा तुमको कैसा पता चला? हम शुद्ध भक्ति नहीं करते ये हमारा कमी है, कमी हमारा है, परंपरा में कोई कमी नहीं है, हमारा बुद्धि में कमी है, ये बुद्धि से गुरुदेव का सेवा कर। जय श्री श्री गौर नित्य राधा प्यारी जगत राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। व्यवसायत्मक का बुद्धि क्या है, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, ये शब्द प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की तिरोभावी तिथि पर एक प्रवचन ने दिया है, आपने आप देखिए फोलियो में देखिए। If you strictly try to serve the spiritual master and his order, the Krishna will give us all facilities. हम लोग, हम भक्त लोग अगर कुछ भी गुरुदेव का आदेश को पालन करने के लिए बहुत गंभीरता सहित कुछ भी प्रयास करेंगे, सब व्यवस्था कृष्ण करेंगे हमारे लिए। हम क्या करते हैं, अभी सेवा नहीं करते, खुद के लिए व्यवस्था करते हैं। बाहर के लोग जैसे जीने के लिए तरस रहे हैं, हम खुद का व्यवस्था, मैं कैसे जीत जाऊंगा, कैसे कौन सा डिपार्टमेंट को जाऊंगा, खुद का जीने के लिए व्यवस्था है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। गुरु जी के लिए करना चाहिए, दैट इज सीक्रेट। ऑल्दो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, आई नेवर थॉट, बट आई टुक इट एंड लिटिल सीरियसली बाय स्टडिंग कमेंट्री बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा स्वप्न में, मेरा ये चिंता भी नहीं था कि इतना बड़ा संस्था बनेगा, और कहां मैं भारतीय हूं और वृद्धावस्था है और कहां अमेरिका है। लेकिन मैंने जब पढ़ा प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कमेंट्री, इसमें मेरा गंभीरता आ गया। मैं गुरुजी के लिए कुछ करने के लिए प्रयास किया और देखिए सब व्यवस्था हो गया। यही कमेंट्री को आज हम सुनना है। गुरुजी का ऊपर कैसे, गुरुजी का ऊपर भरोसा कैसा रहना चाहिए और सेवा कैसा करना चाहिए। अभी जो गुरुदेव का सेवा हम कर रहे हैं ना, इसमें हमारा भलाई हमारा सुख है। हम 100% सरेंडर नहीं है। सेवा ये नहीं है, सेवा का मतलब है ये खुद का सुख छोड़ना ही सेवा है। आपका गांव में कोई आदमी आता है या घर में कोई आदमी आता है, आप क्या करते हैं? खाना पीना करने का बाद आप उसको खिलाता है क्या? खुद का सुख जो छोड़ता है तब तो वो सेवा होता है। सर्वभ्यो अपि बुद्धिभ्यो भक्ति योग विषयिणी एव बुद्धि उत्कृष्टम। जितना बुद्धि है विश्वनाथ चक्र ठाकुर, एक कमेंट्री प्रभुपाद जी ने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बोला ये जब मैं पढ़ लिया तब गुरुजी के लिए सेवा करने के लिए मेरा मन में इतना गंभीरता आ गया, थोड़ा मैं प्रचेष्टा किया, देखिए सब व्यवस्था हो गया। सर्वभ्य अपि बुद्धिभ्य भक्ति योग विषयिणी एव बुद्धि उत्कृष्टम। जितना बुद्धि है इसमें भक्ति योग विषयिणी बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि, क्या है? इह भक्ति योगे व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही एव। भक्ति योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है, दो नहीं है। हमारे तक कितना बुद्धि, खुद का भलाई के लिए हमारा बुद्धि कितना सोचता है, इसी में मेरा भलाई है, इसमें मेरा भलाई है, कीर्तन में मेरा भलाई है। कोई बोलता है नहीं नहीं मैं प्रवचन करूंगा तो इसमें मेरा भलाई है, कोई बोलता है नहीं नहीं मैं सेवा करूंगा तो इसमें मेरा भलाई है। ये बुद्धि का विचार है। एक है वह, क्या है वो? ममा श्रीमद गुरु उपदिष्टम भगवत कीर्तनम स्मरणम चरणम परिचरणादिकम एतद एव मम साधनम। हम लोग का साधन क्या है? विश्वनाथ चक्र ठाकुर रिकमेंड। श्रीमद गुरु उपदिष्ट, गुरुदेव ने हमको जो आदेश प्रदान किया है, जो सेवा प्रदान किया है, स्मरण करने के लिए कीर्तन करने के लिए जो जो आदेश हम लोग को प्रदान किया है, यही मेरा साधन है। चाहे शास्त्र में कितना ऊंचाई तत्व हो, हमारा मन इसका ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम अधिकारी नहीं है। बुद्धि बिगड़ जाता है ना कभी कभी। हमारा गुरुदेव का जो आदेश है, कीर्तनम स्मरणम चरण परिचरणादिकम एतत एव मम साधनम, एतत एव मम साध्यम। सिर्फ साधन नहीं है, एक साधन है एक साध्य है। साध्य का मतलब समझते हैं ना, क्या साध्य है हमारा? साधन तो करते हैं हम, हरिनाम साधन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, गुरुदेव का आदर्श पालन करना, यही मेरा साधन है और यही मेरा, यही हमारा साध्य है। तब हम सोचेंगे इतना साल मैंने मंदिर में रहा, भक्ति होता है कि नहीं किसको पता चलेगा, मैं गोलक वृंदावन जाऊंगा कि नहीं। एतत एवं मम जीवातु, यही मेरा जीवन है। गुरुदेव ने मुझे जो उपदेश दिया है यही पालन करना मेरा जीवन है। जीवातु साधनो साध्य दशायाम त्यक्तु अशक्यम। साधन को छोड़ना, गुरुदेव ने मुझे जो आदेश दिया इसको छोड़ना, या साध्य अवस्था में प्रेम प्राप्ति हो जाने का बाद भी इसको छोड़ना भी असंभव। एतत एवं काम्यम, यही मेरा कामना है। एवं कार्यम, यही मेरा कार्य है। गुरुदेव का आदेश ही मेरा काम्य है, ये मेरा कार्य है। एतत अन्य नमे कार्यम नापि अभिलषणीयम, इसी को छोड़कर दूसरा काम में मेरा अभिलाष नहीं है। ये क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। जो कहा है गुरुदेव ने उसको ही करना है। इसका सिवा चाहे कितना सुंदर भक्ति का अनुष्ठान हो, मन उधर नहीं जाना चाहिए। ये भक्ति नहीं है, ये मन का भक्ति है। मन सोचता है इसमें मेरा भलाई है, इतना माला जप करूंगा, ये करूंगा, वृंदावन जाऊंगा, ये खुद का विचार है, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं। स्वप्न अपि अत्र स्वप्न अपि न अन्य अभिलषणीयम, स्वप्न में भी मेरा अन्य चिंता नहीं है, सिर्फ गुरुदेव का आदेश पालन करना ही मेरा लक्ष्य है। अत्र सुखमस्तु दुखमस्तु, और पालन करने में गुरुदेव का आदेश पालन करने में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों में आया। संसार नश्यतु व न नश्यतु, प्रभुपद ने इसी को पढ़ा। प्रभुपद ने बोला मुझे इतना गंभीर लगा, इसमें मैं थोड़ा ट्राई किया, ठीक है मैं गुरुदेव के लिए कुछ करूंगा। तब गुरुदेव ने सब फैसिलिटीज मुझे दे दिया। आज जिन जिन लोग इस्कन में बहुत बड़ा प्रचार रखे या बहुत बड़ा पदवी में है, जो कुछ है उनका बैकग्राउंड यही है, गुरुजी के लिए किया है कुछ, इसीलिए गुरुजी उनको दे रहे हैं ये पद, कृष्ण दे रहे हैं। खुद के लिए जो हर समय खुद की व्यवस्था में है, उन लोग के लिए कुछ भी नहीं है, भक्ति योग में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब गुरुजी के लिए करना चाहिए, कृष्ण के लिए करना है। खुद के लिए व्यवस्था करेंगे तो एक माया एक लात लगाएंगे, इसको उनका बाउंड्री का बाहरी बस फुटबॉल जैसा हो जाएंगे आप। खुद के लिए कुछ करना है तो चलिए संसार में माया जगत में करिए, इधर आए हैं हम गुरु और कृष्ण के लिए। ये खुद के लिए व्यवस्था करने का स्थान नहीं है, ये बैकुंठ है। बैकुंठ में जो कुछ करना आप चाहते हैं किसी के लिए करना चाहिए, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए करना है। सुखमस्तु दुखमस्तु संसार नश्यतु बान नश्यतु, मेरा उद्धार संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं हो ये भी चिंता नहीं करना चाहिए। गोलक वृंदावन जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये चिंता भी छोड़ना चाहिए, ये व्यवसायत्मिक बुद्धि। अब तत्र मम कापि नो क्षति ही, इसमें मेरा कोई क्षति नहीं है, मुझे संसार से चाहे छुटकारा मिले या नहीं मिले, ये है व्यवसायत्मिक बुद्धि। इसको व्यवसायत्मिक बुद्धि बोलते हैं, और इसी बुद्धि के आधार पर गुरु जी का सेवा करना चाहिए। गरिष्ठ ये है ना, धत्ते गरिष्ठ चरणार्चना निशातम, तीक्ष्ण बनाना चाहिए अस्सी को, खड़ग को, तलवार को, गुरु जी का सेवा करना चाहिए। और प्रभुपाद जी हर समय वही तात्पर्य में देखिए, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कितना बार प्रभुपाद जी गीता में भागवत में सब लिखा है। और सुदामा को यही बोला है, एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतम् यद वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थार्पणम् गुरुम्। एतदेव हि सत्शिष्यै संदीपनि, जब कृष्ण और बलराम दोनों ने लकड़ी ढोकर लाए थे ना, तो आए ने रात भर खड़े रहे, बरसात हो गया, ठंडे के मौसम में बरसात, रात भर वो लकड़ी लेकर खड़े रहे मस्तक के ऊपर, और सुबह सुबह संदीपनि मुनि ने गया गुरुजी की सेवा। कृष्ण के लिए गुरु सेवा करना क्या जरूरी है, वो संकल्प करेंगे तो कितना लरी लकड़ी आ जाएगा संदीपनि मुनि का आश्रम को, लेकिन उन्होंने नहीं नहीं गुरु सेवा करना है ना, मुझे जाना है, खुद गया कृष्ण और बलराम। और सुदामा उस समय थे, आज सुदामा को वही बोल रहे, कृष्ण बोल रहे हैं तुमको पता है ना हम दोनों मिलकर कैसे गुरु सेवा किए थे। और संदीपनि मुनि ने जब दर्शन किया, कृष्ण और बलराम दोनों कांप रहे थे, मस्तक ऊपर लकड़ी है, और यही वाक्य बोले, एतत एव हि सत्शिष्यै, शिष्य दो प्रकार की है, एक सत्शिष्य एक असत शिष्य, सुपुत्र और कुपुत्र, तीन वैरायटी के है। हम जजाति चरित जाएंगे ना, पुत्र भी है ना, यही चार है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ और एक मॉल है, मूत्र है। उत्तमम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारितु मध्यमः अधम असदयात् कुर्यात् अकर्ता उच्चरितः पितुः। चार प्रकार के पुत्र है और चार प्रकार के शिष्य है। इसमें आप सोच लीजिए हम लोग का स्थिति क्या है। पूर्व प्रवचन दे रहे हैं, पिताजी को यौवन देने से पहले ये प्रवचन दे रहे हैं, और ये प्रवचन देकर ही बहुत दुखी हो गए कि गुरुदेव मैंने पिताजी मैंने फर्स्ट क्लास पुत्र नहीं हुआ, उत्तम पुत्र नहीं हुआ, मैं सेकंड क्लास हुआ। तब बोला ठीक है पिताजी शरीर लीजिए। चार प्रकार के पुत्र होते हैं और चार प्रकार के शिष्य भी होते हैं। इसमें शिष्य समझ लीजिए, उत्तमम चिंतितम गुर्यात्, जो पिताजी क्या चिंतन कर रहे हैं या इसका मनोभाव क्या है, गुरुजी का मनोभाव क्या है जो पकड़ते हैं, ये उत्तम है। उत्तम पुत्र, उत्तम पुत्र कौन थे एक उदाहरण दीजिए। नहीं, परशुराम मध्यम पुत्र है, उत्तम पुत्र थे पितामहभीष्म। संतनु ने शादी करने के लिए प्रतिश्रुति दे दिया था ना किसी को, दशराज की कन्या सत्यवती को, लेकिन उनका जो कंडीशन था, शर्त था, नहीं भीष्म शादी नहीं करना चाहिए। पितामह भीष्म तो पुत्र को बताएगा कैसा, लेकिन पितामह भीष्म ने पकड़ लिया। पिताजी दुखी क्यों है, उत्तम पुत्र है। चिंतितम कुर्यात्, पिता क्या सोच रहे हैं, शिष्य यही है, उत्तम शिष्य। देखिए प्रभुपाद जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ने क्या सोच रहे हैं, उनका मनोभाव क्या है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, रूप गोस्वामी जैसा है, प्रभुपाद जैसा है, ठाकुर जी का क्या मनोभाव है उसी के हिसाब से ही इसको हमको चला है। और आज देखिए वही आश्रम जितना बाहर के आश्रम है गौड़ी संप्रदाय सब फॉलो कर रहे हैं किसी को, इस्कॉन को, उत्तम है। उनको पता है ये कलयुग में ये भक्त लोग के लिए यही प्रोसीजर है, ये उपाय है। उत्तम चिंतितम कुर्यात्, उत्तम पुत्र कौन है, जो पिताजी जो चिंता, उत्तम शिष्य भी वही है, उत्तम शिष्य। गुरु जी चिंता जो कर रहे हैं उसको करना चाहिए, बोलने से करते हैं ना, ये सेकंड क्लास हो गए। प्रोक्तकारितु मध्यमः, बोलने का बात जो करता है। परशुराम जमदग्नि ने बोला कि परशुराम मार दो माता को, गर्दन काट दो, उठाया काट लिया, वो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं है। और द्वितीय श्रेणी के शिष्य यही है, गुरुदेव जो बोलते हैं ना उसको पालन करते हैं। अभी कितना ये सेकंड क्लास की है यार, हम लोग कौन सा क्लास में जाएंगे, सेकंड क्लास तो गया, फर्स्ट क्लास तो बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट क्लास तो गया, सेकंड क्लास बोलने का बाद भी करना मुश्किल है ना, ये नहीं करते हम, पालन नहीं करते हैं, तो सेकंड क्लास भी गया। और थर्ड क्लास, थर्ड क्लास कौन है, अधमा अश्रद्धयात कुर्यात, नहीं करते हैं अश्रद्धयात, श्रद्धा नहीं है फिर भी करते हैं, विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, करते हैं ठीक है चला लीजिए, क्या करे साधु बने हैं तो रहना है जीना है, तो मंदिर में रहेंगे तो कुछ सेवा करना है, दीक्षा लिया है तो कुछ करना है, ऐसे ही करते हैं हम। अश्रद्धया कुर्यात, यो पुत्र या शिष्य अश्रद्धा में करता है, श्रद्धा नहीं है, प्यार नहीं है। ठाकुर जी का सेवा बिना प्यार में नहीं होता है, प्यार चाहिए, पहले प्यार उसका बाद सेवा। सेवा का मतलब यही है, एक कर्म है और एक सेवा है। एक कर्म शब्द, अरे ये सेवा है प्रभु जी के लिए, प्यार चाहिए। जो थर्ड क्लास कौन है, प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, फिर भी करता है, तो इस विभाग में कितना परसेंट आएंगे हम लोग, तो विचार कर लीजिए। और एक क्लास भी है, तो पिता की मल की बराबर है, मल समझते हैं ना, यही है विष्ठा की बराबर है। और यही एक शिष्य भी एक फोर्थ क्लास के शिष्य है, अकर्ता उच्चरिता पितुहु, अकर्ता जो पिता गुरुजी का आदेश पालन नहीं करता है वो मल की बराबर है, विष्ठा की बराबर है, सेवा क्या करेंगे। धत्ते गरिष्ठ चरणया अर्चनया निशातम, गुरुजी का सेवा करने के लिए कम से कम सेकंड क्लास होना चाहिए, मिनिमम प्लेटफॉर्म, जो बोल रहे हैं उस इतना ही करना चाहिए। और मनभाव को पकड़कर सेवा करना ये तो बहुत बड़ा बात है। ये शिष्य कहां मिलेगा, अभी कहां मिलेगा, 10 बार बोलने का बाद फिर भी गुरुजी को पूछते हैं गुरुजी क्या करना है, ये करने से अच्छा नहीं होगा, गुरुजी को ये बुद्ध बनाते हैं आजकल जो आए हैं। कुछ बोलने का अधिकार नहीं है गुरुजी का, सामने बोलने का अधिकार शिष्य का नहीं है, यही शिष्य का पोजिशन है। शिष्य का स्थिति यही है, गुरुजी का सामने बोलने का अधिकार आपका नहीं है, जो बोल रहे हैं तथास्तु बोल रहे हैं, आज्ञा ठीक है ठीक है ठीक है, अब जो बोलते ये ठीक है। इसी में बुराई भलाई, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, ये प्रभुपाद जी ने ये बोला है, शास्त्र ये बोला, नहीं बोलने का अधिकार नहीं है, जिसका बोलने का अधिकार है वो शिष्य नहीं है, कोई बोलने का अधिकार नहीं। जिस दिन हमने गुरु जी से समर्पण हुआ, दीक्षा ले लिया ना, अभी हम अधीन है, अगर कुछ बोलना है तो 10 बार पैर पकड़कर प्रणाम करके अनुमति लेकर बोलना है, गुरु जी ये बोलना चाहता हूं, उपदेश नहीं। आजकल उपदेशिया गुरु बहुत हो गए हैं, गुरुजी तो गुरुजी का पोस्ट में है, उपदेशिया गुरु बहुत है, ये चेला लोग उपदेशिया गुरु हो जाते हैं, वो उपदेश श्रवण करते करते वो एक गुरु हो जाते हैं, सबको उपदेश देने लगते हैं, फिर बाद में गुरुजी को उपदेश भी देते हैं, ये उपदेशिया गुरु हो जाते हैं। ये शिष्य का काम नहीं, एतत एव ही सशिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, निष्कृतम ऋण शोधनार्थम, गुरुजी का ऋण को शोधन, ऋण बोलते ना हिंदी में, ऋण शोधन करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग, हम ऋणी है। सर्व अर्थ आत्म समर्पणम गुरु, गुरुजी को जितना धन संपत्ति है ना सब दे देना चाहिए, जितना है प्रॉपर्टीज, आपका कुछ नहीं है ब्रह्मचर्य लोग का प्रॉपर्टी भी है, क्या प्रॉपर्टी है, शरीर है, शरीर को देना चाहिए। और गृहस्थ लोग का जो बाड़ी वगैरह सब कुछ है ना, सब दे देना चाहिए, सब गुरुजी का है, शास्त्र का यही सिद्धांत है। इधर भी दसवां स्कंद में यही है, सप्तम स्कंद में ही आप पढ़ रहे थे ना, गुरु शुश्रूषया भक्त्याम सर्वलब्धार्पेण न चम संगेना साधु वक्तानं ईश्वर आराधनान च, प्रहलाद महाराज यही बात बोल रहे हैं, सर्वलब्धा अर्पणं च, जितना है आपका पास लब्धा सब गुरु का है, कहां मिलेगा आजकल ऐसा शिष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज का गृहस्थ भक्त थे, कटक में है ना रेवेन्शा कॉलेज में, वो प्रोफेसर थे एवेंशा कॉलेज में, प्रोफेसर थे निशिकांत सानियाल, उनका नाम था निशिकांत सानियाल, जो दीक्षा नाम में भूल गया हूं, ठाकुर जी का शिष्य था। और उनका महीना में किराया मिलता है ना, महीने के अंत में जितना किराया मिलता है सब लाकर गुरुदेव को दे देते, घर में बीवी है बेटा है सब कुछ है, प्रोफेसर है, जितना सब दे देते, तो घर चलेगा कैसा। ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने खुद का जो सेक्रेटरी है ना उनको पैसा देते, तुम ले जाओ उनका माता जी को देकर आओ, वो तो सब दे देता है ना, उनका बस कुछ नहीं, तो उनको पता चल जाता था, वो पत्नी को पूछ रहा था माता जी तुमने सब्जी कहां से लाई, मैं गुरुजी ने भेजा है पैसा, तब बोलता है ये देखिए ये गुरुजी का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है, गुरुजी का पैसा है, एक पैसा जैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा शिष्य कहां मिलेगा अभी? एक प्रोफेसर है, महीना में जितना किराया सब गुरुजी का, गुरुजी को दे देते। ब्रह्मचारी जीवन में भी ऐसा है, इस शरीर गुरुजी के लिए जब भी बुलाया जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, 6 घंटा सेवा करना है या मिनिमम 6 घंटा है, कंडीशन जो करता है वो तो भक्त नहीं, बुला जाने पर जब बुलाया जाए तब सेवा है, चाहे रात हो दिन हो गुरुजी के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। सोल्जर लोग का क्या कंडीशन है पता है ना आपको, जो बीएसएफ क्या बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहते हैं ना, क्या है उनका कंडीशन, 24 घंटा युद्ध घोषणा हो गया तो रात दिन खड़े होकर टट्टी करेंगे, उधर जाने इधर उधर नहीं जाएंगे, खड़ा होकर रहेंगे, उधर खाने पीने के लिए ऊपर ऊपर से आता है, उधर खड़े खड़े खाते हैं, फिर बंदूक पकड़कर खड़े होते हैं। भक्त जीवन ऐसा ही, गुरुजी के लिए बिल्कुल प्रस्तुत, ऐसे साधु भी थे, ऐसे भक्त, ऐसे गुरु से भी गरिष्ठ, तभी तो आप जो खड़ग है ना, जो तलवार है, तब तो निशात तेज होगा ना, तब तो माया को परास्त करेंगे। गुरुजी की सेवा बिना माया तरना ये संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं। कृष्णा नित्या दास जीव ताहा भूली गेला, कृष्णा नित्या दास जीव ताहा भूली गेला, एई दोसे माया तार गलाए बांधिल, एई दोसे माया तार गलाए बांधिल। हमको जो माया सुन रहे थे ना काल, माया जो गलाए बांधिला, पता है ना आपको बकरी का गला में क्या लगता है, देखे ना बकरी कैसा करता है, मां मां बोलता है, छोड़ देता है क्या, गला में लगता है ना, ऐसे माया ने गला में रज्जू डालकर रस्सी डालकर खींचता है जीव को, सबको खींचेगा। क्यों? जीव भूल गया एक चीज, क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, इसीलिए जीव का जो कष्ट इस संसार में एक चीज के लिए, मैं भगवान का दास, जब भगवान का दास हूं तो माया का दास मैं क्या हूं, क्या मैं संसार का दास हूं, मेरा बेटा का दास हूं, मेरा बीबी का दास हूं, क्या मैं तो गुरु जी का दास हूं, कृष्ण का दास हूं, तो सेवा किसके लिए करना चाहिए? तो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या टाइम नहीं है, माया का सेवा करने के लिए टाइम है। जिसके लिए हम दुख भोग रहे हैं वही काम कर रहे हैं। तब सनातन ने प्रश्न किया महाप्रभु जी, प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि जीव विस्मरण हो गया कि वो कृष्ण का दास है इसीलिए दुखी है, तो मुक्त कैसा होगा, माया की कबल से माया की हस्त से उनका मुक्त कैसा होगा? एक ही उपाय, यही सिद्धांत, गत्ते गरिष्ठ चरण, यही एक उपाय। ताते कृष्णा भजे करे गुरु सेवन, ताते कृष्णा भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छुटे पाए कृष्णेर चरण, माया जाल छुटे पाए कृष्णेर चरण। दो काम करना है हमको, ये महाप्रभु का सिद्धांत, जो भागवत का सिद्धांत है ना, सारा तीसार चैतन्य चरितामृत है। हमारा गुरुदेव इसलिए कहा करते हैं ये पीजी कोर्स है, रिसर्च स्टडी है, जितना शास्त्र का सार सारातिसार चेतन चरितामृत है। जीव कृष्ण दास है, जीव कृष्ण का दास है, ये विस्मरण हो गए, भूल गए, इसीलिए इसका दुख है। तब सनातन प्रश्न कर रहे, प्रभु उसका उद्धार कैसे संभव है, तब ये बोला है, ताते कृष्णा भजे करे सिर्फ कृष्ण भजन नहीं है, कभी ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, ये गौड़ीय वैष्णव लोक का सिद्धांत नहीं है। मैं कहां भी रहूंगा भजन करूंगा कृष्ण मुझे प्राप्ति हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, कृष्ण का भजन करना चाहिए और गुरु जी का सेवा करना चाहिए, ये अस्त्र है, अस्त्र को तेज करना है, तीक्ष्ण करना है। ज्ञानाशी बलम, ज्ञानाशी अच्युत बलम ददते सशत्रु, लिखा है ना, गुरु का सेवा करने से ज्ञान ये तलवार है, ये तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, इसी में शत्रु को हम परास्त कर सकते। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाला छुटे पाए कृष्ण र चरण, तब तो माया हमको छोड़ देगा। भजन से नहीं छूटता है, क्या भजन करेंगे, शरीर अविद्या जाल हम बोलते हैं और अविद्या जाल के बीच हरे कृष्ण करते हैं। इस शरीर को लेकर तो भजन करते हैं ना, हमको तो पता है ना शरीर अविद्या जाल, पता है ना, गुरु जी का कृपा चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए, यही तो तात्पर्य में प्रभुपाद कितना बार इसको लिखा है, नहीं सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुरु जी का सेवा करना चाहिए, यही सेवा, बहुत प्यार से गुरु जी का सेवा करना चाहिए। अरे ये तो वही सत्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम, ये सत्शिष्य का कर्तव्य है, गुरु जी का ऋण को शोधन करने के लिए सब देना है, इस शरीर को देना है, ब्रह्मचर्य लोक का ये शरीर संपत्ति है, उसको दे देना है, जब भी बुलाया जाएगा तब चलो गुरु जी का सेवा करना है, गुरु जी का सेवा करना। पहले जमाने में ऐसा ही था, पहले गुरु सेवा उसका बाद ही मंत्र, आजकल क्या हो जाता है, थोड़ा सेवा में एक साल का बाद मंत्र मिल जाता है ना, तब वो सोचता है मैं तो अभी गुरु हो गया, शिष्य बनने के लिए थोड़ी कोई आता है, आजकल शिष्य गुरु ज्यादा है, शिष्य कम है, ठाकुर ज्यादा है, पुजारी कम है, वक्ता बहुत है, श्रोता कम है, हर जगह में यही तो गुरु मनोभाव सबका हो जाता है। गुरु जी का सेवा क्या है उनको पता नहीं है ना, मंत्र प्राप्ति कर लेता है ना, मन में अहंकार आ जाता है, पहले जमाने में ये नहीं था, मंत्र जब तक सेवा मनोभाव नहीं है तब मंत्र गुरु जी प्रदान नहीं करते थे। महाभारत में एक प्रसंग है, आप शायद सुना होगा, एक बहुत बड़ा ऋषि था, बहुत प्रसिद्ध गौतम ऋषि का पुत्र शिष्य था, उतंक गौतम का शिष्य था, कोई ही गौतम ऋषि का आश्रम को आता है ना वो सोचता है कि मैं उतंग जैसा गुरु से भी होंगे, ऐसा बनूंगा, उतंग जैसा गुरु से भी बनूंगा। उतंग बहुत बड़ा गुरु से भी थे, ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं किए थे, पता नहीं था, सेवा करते करते गुरु जी का सेवा करते करते बुढ़ा हो गया, उनको पता नहीं बुढ़ापना आ गया, उनको पता नहीं था कि मुझे बुढ़ा हो गया। कब पता चला, एक दिन वो लकड़ी ढोकर लाते थे, पहले जमाने में तो उसको क्या बोलते हैं, जटा बनाते हैं ना, ब्रह्मचारी लोग केश धारण करते हैं, जटा बना लेते हैं, सफेद बाल वगैरह हो जाता है, तो वही जटा के ऊपर लकड़ी लेकर आ रहा था, लकड़ी लाया तो आश्रम में फैल दिया, नीचे फैला, जब नीचे फैला ना तो श्वेत केश है वो निकला, एक केश, वो केश देखा, बाल देखा, कहां, लकड़ी का ऊपर, रोना चालू कर दिया। क्यों रोना, क्यों रो रहे थे, मैं बुढ़ा हो गया, आज पता चला, बचपन में आया सेवा करते करते बुढ़ा हो गया, उनको पता नहीं है, लेकिन हमको पता चलता है, इतना साल हो गया आश्रम में, तो क्या सेवा हम कर रहे हैं, शरीर का स्मरण है ना, पिता माता का स्मरण है ना, घर का स्मरण, घर का एड्रेस जब भूल जाएंगे तब तो सेवा हो रहा है, जब कोई पूछेगा आपका घर कहाँ है, पूर्वाश्रम कहाँ है, कहाँ है पता नहीं चलता है, तब तो सोचना चाहिए कि हम सेवक है, हमारा तो सब कुछ एड्रेस, अभी एड्रेस नहीं था, अभी बुला ले, मोबाइल आ गया ना, वो बंधु है ना, वो बंधु है, तो जब भूल जाएंगे संसार शरीर सब भूल जाएंगे तब तो सेवा होता है। तो रोना चालू कर दिया। तब गौतम ऋषि ने दूर से देखा कि अरे अरे उत्तंक रो रहे, क्यों रो रहे? हर दिन आनंद में सेवा कर रहा था, आज रो रहे क्यों? उनका लड़की का नाम सुशीला है, सुशीला को भेजा, सुशीला तुम जाओ, चक्षु से जो लोतक आता है ना, रोता है ना, उसको तुम पकड़ लो, क्योंकि वो गुरु से भी है, वो इतना सेवा मेरा सेवा किया है ना, उसको धारण करने का क्षमता धरणी माता का नहीं, बिगड़ जाएगा, धरणी माता बिगड़ जाएगा, ये गुरु से भी है, बचपन से सेवा किया है, जाओ जाओ तुम पकड़ो। लेकिन वो जब पकड़ने के लिए कोशिश किया, उनका हस्त में धारण करने की क्षमता उनका भी नहीं रहा, इतना तेज अस्त्र शक्ति संपन्न अस्त्र था। तब गौतम ऋषि खुद आया, बेटा उतंक तुम क्यों रो रहे? ना गुरुजी मैं बूढ़ा हो गया। अरे तुम आज बूढ़ा होगा, तुमको पता चला आज, इसीलिए रो रहे हैं? सबको तो बूढ़ा होना होगा, क्यों रो रहे हैं? नहीं नहीं गुरुजी, आप मेरा साथ कितना भक्त आए, आपका सेवा किए, आप सबको घर को भेज दिया शादी करने के लिए, मुझे आप क्यों नहीं बोला कि तुम जाओ शादी करो? क्यों नहीं बोला? बुड्ढा हो गया ना, तब उनका याद आता है, तो मैं शादी तो नहीं किया हूं। इसका मतलब आप सुस्त समझते हैं ना, शादी नहीं किया हूं, बुढ़ापन में याद आ रहा है ये, तो केस को देखकर, सफेद केस को देखकर याद आ रहा। तब गुरुजी ने बोला क्या है? ये मेरा दोष नहीं बेटा, ये तुम्हारा भी दोष है। तुम कभी बोला है? तुम कभी बोला है कि गुरुदेव मैं घर को वापस जाऊंगा गांव को? तुम तो कभी नहीं बोला है ना गुरुजी, आप भी बोलना चाहिए था ना। तो गौतम ऋषि ने बोला कि उतंक मैं तुम्हारा सेवा में इतना संतुष्ट हूं, इतना संतुष्ट हूं, मेरा मन कभी नहीं बोलता है कि उतंक तुम जाओ आश्रम से। तुमने मुझे प्रार्थना नहीं किया और मेरा इच्छा भी नहीं है तुमको छोड़ने के लिए। तुम्हारा बुढ़ापन आ गया तो इसमें मेरा क्या दोष है? क्या तुम अभी शादी करने के लिए चाहते हो क्या? तो मैं दे देता हूं, तुम्हारा गुरु जी जो सेवा तुमने किया है ना, उसका बल तुम्हारा पास है, मेरा पास नहीं। सेवा का बल साधक का पास है, शिष्य जो गुरु जी का सेवा करता है ना, उसका पास ही बल है, गुरु जी प्रदान कर देते। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, सेवा करने से करुणा शक्ति, भगवान की करुणा शक्ति खुद शिष्य का पास आ जाता है। तो तुम्हारा पास सब बल है, तुम अगर संकल्प करोगे ना, अभी तुम युवक हो जाएगी, नव युवक हो जाएगी। देखो ट्राई करो, ट्राई करो। उतंग ने संकल्प किया मैं युवक बनूंगा, तत्क्षण युवक बन गया। गुरुदेव तुम्हें अब घर को वापस जाना चाहता हूं, ठीक है तुम जाइए, लेकिन तुम शादी करना संभव नहीं है। कौन बोल रहे हैं? गौतम। क्यों? तुम्हारा जैसा गुरु सेवी को तुम जिसको शादी करेंगे ना, कोई लड़की संसार में नहीं है तुम्हारा वीर्य को धारण करने में समर्थ है, तुम जैसा गुरु सेवी हो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, मेरा कन्या है। शादी करेगा तुम करना चाहते हो तो यही मेरा कन्या को शादी करो। तुम्हारा जैसा गुरु सेवी कहां मिलेगा? तुम्हारा वीर्य को धारण करने में समर्थ सुशीला का है, मेरा कन्या का है, ले जाओ मेरा कन्या, शादी करने का इच्छा तो इसी को ले। देखिए गुरु सेवा का क्या शक्ति है, दूसरा कोई नारी नहीं है तुम्हारा वीर्य को धारण करने में समर्थ है। तब उत्तंक ने सोचा, जब गुरुदेव ने खुद का कन्या को मुझे दे रहा है शादी करने के लिए, तो गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहिए ना। गुरुदेव ने बोला यही दक्षिणा है, और क्या दक्षिणा चाहिए तुमको? मेरा कन्या को दे रहा हूं तुमको शादी करने के लिए, तुम फिर चाहते हो कि गुरु दक्षिणा कुछ देना है? गुरु दक्षिणा बोलते हैं ना हिंदी में, दक्षिणा देते हैं ना होता, तो क्या करें? वो बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे देना है, मुझे देना है। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ अहल्या को पूछो। अहल्या ने बताया नहीं बेटा उतंक आश्रम में तुम बालकपन से आए तो अभी तो बुढ़ा हो गए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा सेवा तुमने इतना सेवा किया, दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं गुरु दक्षिणा नहीं देने से विद्या संपन्न नहीं होता है, मैं सुना हूं, मुझे देना है। गुरुजी ने इनकार कर दिया, आप भी इनकार कर देते नहीं नहीं कुछ देना है। तो बोला ठीक है देना चाहते हो तुम, जाओ सोदास की पत्नी है उसका नाम है मदयंती, उनका पास से कुंडल है, ये ऐसा है कुंडल है इसमें स्वर्ण टपक रहे हर समय, और उसको लेने के लिए संसार में इंद्र से लेकर जक्ष से लेकर कुबेर सब तरस रहे हैं वो छिन्न करके लेने के लिए, तुम उसको लाकर मुझे दो। तो गौतम ऋषि को पता नहीं था, न मैद अहल्या ने भेज दिया। तो गौतम ऋषि ने पूछा तो क्या हुआ उतंग कहां गया, तब अहल्या ने बताया कि मैंने उसको भेजा हूं मदयंती से कुंडल लाने के लिए। अरे तूने सर्वनाश कर दिया, तुमको पता नहीं है मदयंती सती नारी है मदयंती, और सौदास अभी वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ की अभिशाप से राक्षस है, अरे उतंग जाएगा ना तो क्या होगा, तो भक्षण कर देगा। तब रो रहे थे गौतम, रो रहे थे। इसमें ये महाभारत में जो प्रसंग है ना इसमें हम लोग को सीखा है, जो गुरुदेव का सेवा करता है ना देवता लोग उनको सहाय होते हैं, और जो गुरु का सेवा नहीं करता है मंत्र लेने का बाद देवता लोग उनको गिराते हैं। वो जब चालू पथ में गया एक बीर, तो पथ में ही साक्षात हो गया किसका साथ, सौदास का साथ। वो तो राक्षस हुआ था, उसको भोजन करने के लिए प्रस्तुत हुआ, मैं तुमको भोजन करूंगा, आपको पता है मैं कौन हूं, देखिए गुरु से भी उत्तंग बोल रहे हैं, मैं गौतम का शिष्य उत्तंग हूं, तुम कोई भी हो, मैं तो राक्षस हूं, मुझे क्या पता है तुम गुरु से भी हो कि, मुझे भोजन करना है ना, मुझे भोजन, आप मुझे भोजन करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए, सिर्फ मैं कुंडल लेकर सोदास की पत्नी का कुंडल लेकर गुरुजी को दे दूंगा, गुरु पत्नी को दे दूंगा अहल्या को, उसका बाद मैं वापस आ जाऊंगा, आप मुझे भोजन कर लेना। कितना अनुरोध करने का बाद वो छोड़ दिया, ठीक है तुम जाओ 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 जाओ, अरे मैं ही सोदास हूं, तुम जाओ मेरा पत्नी को बोलो वो तुमको कुंडल दे देंगे। तुम जैसा गुरु से, देखिए एक राक्षस का भाव बदल गया, एक राक्षस भावापन्न सोदास वो गुरु सभी को दर्शन किया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, नाहं इज्ञा प्रजातिभ्या तपसोपसमेनवा तुष्टायं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। सुदामा संदीपनी ने यही बताया था, गुरु सेवा में जितना संतुष्ट होता हूं ये वर्णाश्रम धर्म की पालन करने से इतना संतुष्ट नहीं होता, यही भगवान की मत है, यही मत की आधार पर हमारा ये स्कन चल रहा है, गुरु जी का सेवा करना है, गुरु जी का सेवा करना है कृपा, और भागवत की आधार यही है, धते गरिष्ठ चरणार्चनया निसातम, गुरु जी का सेवा करना है और ज्ञानासी ये खड़ग तलवार जो ज्ञान की तलवार उसको तेज करना है तीक्ष्ण करना है, और इसी से शत्रु को परास्त करना, खुद का बल पर नहीं ये संभव नहीं। तब वो जब मदयंती के पास गया तो बोला कि आप दे दीजिए कुंडल, मदयंती ने बोला कि उतंक तुमको पता नहीं ये कुंडल में, कुंडल को लेने के लिए संसार में सब लोग तरस रहे हैं, सब लोग तरस रहे हैं, ये संभव नहीं तुम्हारे लिए, नीचे तुम अगर उसको रख लोगा ना तो नाग लोग उसको ले जाएंगे, सो जाएंगे ना, उसको पहनकर तुम सो जाते हैं ना, इंद्र उसको चुरा लेंगे, और पवित्र उसको होकर उसको धारण करना होता है। उसको अगर एक कुंडल को कोई धारण करता है ना, भूख नहीं लगता है, सुस नहीं लगता है, कोई रोग नहीं होता है। तो बोला ठीक है, तुम्हारा पति ने बुलाए देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुमको पता चला है तो इसीलिए तुम आयो। मेरा पति बोला इसका क्या प्रमाण है, तुम जाओ मेरा पति को बोलो कि एक संकेत मुझे देना चाहिए, फिर वापस आए। उतंक जब वो वापस आए तब बोले आप कुछ संकेत दीजिए, पत्नी नहीं दे रहा है। तब संकेत दे दिया, कुंडल दे दिया, कुंडल को लेकर आए तो बीच में रास्ता में भूख लगा। देखिए ठाकुर जी का क्या लीला है, एक गुरु सेवी के लिए कितना व्यवस्था है, देवता लोग कैसे सहाय करते हैं। ठाकुर जी हमको सिखा रहे हैं सेवा करो, गुरु जी का सेवा करो, तुम्हारा पीछे में सब है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, देवता लोग सहाय करेंगे। और खुद का व्यवस्था में रहेंगे तो सब ये देवता लोग भी तुमको विरोध करेंगे, गिरा देंगे। वो एक बेल का गच, ये तो है बेल का गच है, ठाकुर जी के सामने बेल का पेड़ देखा, बेल का पेड़ का ऊपर भूख लग रहा था, वो तो मृग चर्म धारण किया था, हरी हिरण का जो चर्म है ना उसको धारण किया था, उसको कवर कर दिया वो कुंडल को। ऐसा होता है ना, क्या बोलते उसको, शाखा होता है ना, शाखा का बीच में जो स्थान है उसी का ऊपर रख लिया। वो रखते रखते ही थोड़ा उतर रहा है, इसी का बीच एक बैल गिरा, इसी का ऊपर वही कुंडल का ऊपर जहां वो कवरिंग करके रखा था मृग चर्म पर, उसी का ऊपर गिरा। तब कुंडल नीचे गिरा, तब नाग आया उसको लेकर नीचे गया उसका सामने। तब उत्तंक ने देखा, अरे सत्य बात है, मदेंद्र ने यही बोला था, मुझे गुरु दक्षिणा देना है। छोटा लकड़ी लाया, उसको खुदाई कर 35 महीना तक खुदाई किया, लकड़ी में तुम नाग लोग जाएंगे। तब इंद्र का दया आया, इंद्र आया एक ब्राह्मण की बेश में, बोला तुम क्या कर रहे हो, मुझे नाग लोक जाना है, तुम पागल है क्या, नाग लोक जाएंगे लकड़ी के खोद कर, अगर नाग लोक में नहीं पहुंचूंगा ना, गुरुजी का सेवा मुझे करना है, ये शरीर आपके सामने त्याग कर दूंगा, इस शरीर का क्या मूल्य है, गुरुजी का सेवा। हर छोटा छोटा हरिदास है ना, छोटा हरिदास शरीर क्यों त्याग कर दिया। चैतन्य महाप्रभु अगर इस शरीर में सेवा नहीं लेते हैं, तो इस शरीर का क्या मूल्य, त्याग कर देना चाहिए। इसलिए कोई गुरु जी का सेवा में नहीं लगा तो ये क्या है, माया इसको भूख करेंगे, इसे बेटर है इसको छोड़ देना है कोई तीर्थ में। तब इंद्र ने बोला ठीक है ठीक है, तो उनका वज्र ना लकड़ी के सम्मुख में लगा दिया, अग्रभाग में लगा दिया, तो वज्र में खुदते खुदते वो चला गया कहां ना। लेकिन नागलोक में जो व्यवस्था देखा वो भी निराश हो गया, इतना नागलोक है, हर जगह में सूर्य नहीं है लेकिन किरण है, अमृत का कुंड है, सब मुकुट पहनकर घूम रहे इधर उधर, कहां इधर मिलेगा कुंडल, कहां मिलेगा। तब रो रहे थे क्या करूं क्या करूं, गुरु जी का सेवा की। तब अग्निदेव ने प्रकट हो गया, अश्व रूप लेकर, घोड़ा की रूप लेकर प्रकट हो गया कि बोला कि देखो मेरा पूछ में आग लगा दो, तब तो नागलोक को पता चलेगा तुम्हारा कुंडल कहां रखा है, लगा दो। तो मेरा पास क्या माचिस है क्या, कुछ तो नहीं है, तो आग कैसे लगा। देखिए देव गुरु भक्त को कैसे सहाय मिलता है, गुरु सेवी को कैसे सहाय मिलता है। बोला तुम ऐसा करो, सिर्फ हवा दे दो, मुख में हवा थोड़ा दे दो, आग लगा पूरा नागलोक ना, तब जितना बड़ा बड़ा नाग थे ना सब आए, पैर पकड़े, किसी का उत्तंक का, क्या चाहिए क्या चाहिए, मेरा कुंडल लाया है ना मुझे दे दियो, दे दीजिए ये मेरा गुरुजी का कुंडल है, दे दीजिए। तो कुंडल लेकर आया और अहल्या को प्रदान किया। तब गौतम ऋषि का सामने पूरा इतिहास बताया, मैं कैसे कैसे लाया। गौतम ऋषि ने बहुत आनंदित हुआ। तब एक बात बोला, उतंग तुमने बहुत बड़ा सेवी हो, लेकिन गुरुजी का सामने कभी क्या बोलते हैं, उड़िया में जिद्दी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिद बोलते हैं वो, हिंदी में भी ऐसा है। अच्छा, जिद नहीं करना चाहिए। मैंने मना कर दिया कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, पत्नी लेकिन तुमने जिद किया है, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। नहीं, गुरु का सामने ये नहीं करना चाहिए। तुम जैसा समर्थ पुरुष ने ये कार्य कर लिया, लेकिन तुम्हारा अगर कोई अनुसरण करेगा तो क्या होगा? गुरु के सामने कोई भी जिद नहीं करना चाहिए, गुरु जी जो बोलते हैं उसको करना चाहिए। यही बात पर मैं ये बोल रहा था। आपने पढ़ा होगा, यही अध्याय में आता है ना, गुरु सेवा की महिमा, असंकल्पात जयत कामम, कामम क्रोधो विसर्जनात। कैसा कैसा किसको काम कैसा छोड़ना है, क्रोध के साथ छोड़ना है, निद्रा के साथ छोड़ना है, लेकिन सबको छोड़ने के लिए प्रेम भक्ति जहा है ते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहार चरित। भागवत में यही सिद्धांत है। ये भजन मत सोचिए, ये भागवत का सिद्धांत है। कभी कभी भक्त लोग का मन में ये आया है ना, लोग ने इसे लिख लिया है, शायद आचार्य लोग ने इसे लिख लिया है, क्या ये संभव है? गुरुजी को सिर्फ गुरुजी का करुणा में जितना अविद्या है, अनर्थ है। भागवत का यही सिद्धांत है, एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषा अंजसा हि जयेत। यही अध्याय में पिछले में, एतत् सर्वं गुरु भक्त्या, काम क्रोध जितना दोष है साधक का सब नष्ट हो जाता है। गुरु भक्त्या, गुरुदेव की चरण में भक्ति हो जाता है ना। अंजसा जयत, एक शब्द लगा है अंजसा, आराम से, आसानी से काम क्रोध सबको परास्त करने में समर्थ हो सकता है साधक। इसीलिए धत्ते गरिष्ठ चरणार चनया निशातम ज्ञानासी अच्युत बलम दधते शत्रु। और गुरु जी का कृपा और भगवान की, अब क्या है, अब गुरु जी का सेवा करना तो अब सप्तम स्कंद भागवत में यही है, फर्स्ट कंठों में, प्रथम स्कंद में यही है, हर स्कंद में गुरु जी का सेवा का महिमा है। यही सप्तम स्कंद में है ना, प्रहलाद की शिक्षा पर, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु जी का सेवा भक्ति से करना चाहिए, न तो प्रतिष्ठा दिना, प्रतिष्ठा की मनोभाव, बड़पन की मनोभाव रखकर कोई सेवा नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए गुरु जी का। इसमें ज्ञानासी तलवार, ज्ञान तलवार है, तेज होता है, इसी में हम माया को परास्त करने में समर्थ, नहीं तो ये संभव, कभी संभव। आजकल तो सेवा चलता है क्या, दिखाने के लिए मैं बड़ा हूं, गुरु जी का पास पास वो बोलते हैं, जहां भी गुरु जाते हैं ना पास में रहते हैं। सेवा अनुकूल में होता है। गुरु जी का बात को कैसे हम पकड़ेंगे, उनका मनोभाव क्या है, उसको लेकर ही सेवा होता है। जैसा कोई पत्नी है, ये घर में सब काम करता है, सब काम करती है, साफ सुथरा सब काम करती है, कुकिंग वगैरह सब कुछ करती है, लेकिन स्वामी का आदेश पालन नहीं करता है, क्या बोलेंगे? सब करती है, स्वामी का आदेश पालन नहीं करती, सती है क्या? सती नहीं है। तो कोई भक्त सेवा में बहुत दक्ष है, सब क्वालिटी है, कीर्तन भजन सब कुछ करता है, लेकिन गुरु जी का असत शिष्य। आजकल तो सेवा यही, मैंने कहा शायद पुणे में बोला था, आजकल तो सेवा में यही होता है। तो दो सेवक थे, गुरु जी का दो सेवक थे, आपस में झगड़ा हर समय होता है, सेवक का बीच में झगड़ा कभी नहीं होता है, झगड़ा। प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं ना, गोपी का, गोपी लोग कितना, गोपी लोगों का बीच कंपटीशन है, कंपटीशन हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ प्रतियोगिता है बीच में, लेकिन झगड़ा नहीं, कृष्ण को सुखी करने के लिए हमारा ये गोपी भाव है। ये दोनों बीच, ये दोनों गुरु से भी थे, दोनों का बीच हर समय झगड़ा चल रहा था, हर समय मैं सेवा करूंगा, क्योंकि मैं सेवा करूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा गुरु से भी है, वो बोलता है नहीं मैं सेवा करूंगा। कब जब गुरु सोते हैं तो गुरुदेव ने बोला ठीक है तुम ऐसा करो, तुम भी दोनों ही सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हो, ठीक है ऐसा करो, क्या करते हैं पांव दबाते हैं ना। गुरुदेव बोला ठीक है तुम्हारा ये राइट दाहिने पाए तुम्हारा, ये बाँ पाए तुम्हारा, तुम सेवा करो। ये झगड़ा को मिटाने के लिए, झगड़ा को मिटाने के लिए ऐसा कर दिया, दे दिया दो पांव। तो एक दिन गुरुजी ने बहुत घूम घूम के आए, तो जिस दिन आए उस दिन बाँ पैर वाले आए, दाहिने पैर वाले नहीं आए। तो गुरुदेव बोल रहे कि बाएं पैर वाले भक्त को देखो दाएं पैर बहुत दर्द हो रहा है, तुम इसको दबाओ। नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा है क्या, आपने मुझे सेवा दिया है बाएं पैर, ये दाहिने पैर वाला वो नहीं आए, ये उनका कसूर है, मैं सेवा नहीं करूंगा। गुरुदेव बोला अरे पैर तो मेरा ही है ना, ये तो मेरा ही है, नहीं ये आपका हुआ तो क्या हुआ, आपने उनको सेवा दिया है, यही हो रहा है ना मंदिर में, ये उनका डिपार्टमेंट है तो उसको क्या हो रहा है, मुझे क्या मतलब है, ये क्या डिपार्टमेंट श्रृंखला के लिए है। गोलक वृंदावन में यही डिपार्टमेंट नहीं है, पुजारी डिपार्टमेंट और प्रीचिंग डिपार्टमेंट, उधर कुछ डिपार्टमेंट नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है बस कृष्ण का सेवा करो। इधर हम श्रृंखलित नहीं है, हम उद्धत है, हमको श्रृंखला करने के लिए इतना डिपार्टमेंट क्या चाहिए, जिसको जो सेवा है उसको ऑर्डर देना चाहिए, चलो ये करो करो, हम ये नहीं करते इसको, हमको श्रृंखला करने के लिए डिपार्टमेंट है। तो बोले ठीक है गुरुदेव बोले कैसा शिष्य है, देखो आपस में झगड़ा लगा, मैं तो इसको दो भाग कर दिया, देख फिर भी ऐसा है, ठीक है सो गए गुरुजी। दूसरा दिन गुरुजी ने घूम घूम कर आए तो बाँ पार पैर दर्द हो रहा था, उस समय दाएं वाला नहीं आए, तब जब बोल रहे थे दाएं वाला को ये देखो बाएं पैर, नहीं 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 ये मेरा पैर नहीं है, वो जिसका है उसको बुलाओ, आप उसको बुलाओ, मैं उसको क्यों से बात करूंगा। गुरुजी बोला ये कैसा शिष्य है, कैसा शिष्य है, एक दिन दोनों बैठे हैं, गुरुजी बहुत चलते घूमते फिरते बहुत टायर्ड हो गए, दोनों बैठे हैं तो पैर आपको पता होता है ना, रात में नींद जब ज्यादा हो जाता है तो पैर इधर उधर चलाता है, जब ये दाहिने वाला पैर बाँ पैर वो फेंक देता है, क्यों आप इधर आते हो चलो इधर, और बाएं वाले जब दाहिने क्या दाहिने जाते हैं ना, दाहिने वाले फेंक देता है, ये पैर क्यों आते हैं। अरे गुरु जी बोलते इससे ये क्यों करते हैं, उनका तो खूब नींद आ गए हैं, दाएं वाले बाएं ओर फेरते हैं, बाएं वाले दाएं ओर फेरते हैं। तब देखा कि बार बार गुरुजी को बहुत नींद आ रहे हैं, वो टायर्ड हो गए क्लांत हो गए, ये दाएं वाला पैर जितना फेंकते हैं ना बाएं तरफ आ जाता है। तब उसने उठा एक पत्थर लाया, ये क्यों इधर आते हैं, और पत्थर लाया जमा कर लगा दिया है, बोला ये सेवा ये क्यों इधर आते हैं। आजकल ये ही गुरु सेवा है, इसी से आप समझ लीजिए, ज्यादा व्याख्या करने का कोई जरूरत नहीं, आजकल यही हम नुकसान कर देते हैं खुद की सेंटिमेंट के लिए, चाहे मंदिर का हो तो उनका डिपार्टमेंट है, वो उनको संभालेंगे, पैसा नुकसान होता है वो उनका डिपार्टमेंट होगा, इसे मेरा ना मतलब क्या है, ये क्या सेवा है, ये सेवा नहीं, ये सेवा नहीं, सेवक का मनोभाव ये नहीं है, इसी से भला ही नहीं होता है, गुरुजी का सेवा करना है। गरिष्ठ चरणार्चनया निषातम, खूब सावधानी से सेवा कर, बंदे मुई सावधान श्री गुरु चरण पद्मा केवल अवकति सदमा, एक शब्द लगा है यही सबसे बड़ा बलवान शब्द है प्रेम भक्ति, सावधान मत बी केयरफुल, क्या हम कर रहे हैं। गुरु का सेवा करने से पहले दीक्षा से पहले हमारा स्वतंत्रता था, अभी सावधान बी केयरफुल, सावधान होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट नहीं। अगर स्वतंत्र जीवन यापन करने की आपका इच्छा है दीक्षा मत लीजिए, दीक्षा लेने का मतलब यही होता है। अगर कोई टेस्ट भक्ति यज्ञ में कोई स्वाद मिलेगा आपको तो यही उपाय है, खुद का जो प्रयास है छोड़ देना चाहिए, खुद का स्वतंत्रता छोड़ देना चाहिए, गुरु जी का सेवा करना चाहिए, यही सिद्धांत। ये तो बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य। ज्ञानासी अच्युत बलम दभते अस्त शत्रु हो, शत्रु को गुरु सेवा से परास्त कर सकते हैं, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न है तो ठीक है।
हरे कृष्णा महाराज। तो बोलते हैं आर्टिफिशियल, कंडीशनल और इम्पार्शियल सरेंडर, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
हाँ, सेवा होता है ना, गुरु जी का जो सेवा होता है ना, सरेंडर जो होता है, हमारा गुरुदेव हर समय इसका ऊपर ही कहा करते थे, योर सो कॉल्ड सरेंडर इज आइदर आर्टिफिशियल और पार्शियल और कंडीशनल। हम जो गुरु सेवा करते हैं या शरणागति का जो भाव दिखाते हैं ये पूर्ण नहीं, इसीलिए दसवां स्कंध में बोला है सर्व अर्थार्थवरण अर्थ आत्मर्पणम गुरु हो। जीव का पास दो चीजें, भक्त का पास अहम मम, इसको संस्कृत में बोलते हैं अहंता और ममता स्पद, दोनों देना है। बलि महाराज का समर्पण का पूर्ण हुआ, संपत्ति दे दिया, ममता स्पद सब वस्तु दे दिया, लेकिन अहंता स्पद खुद को देना है। भक्ति जीवन में यही है, सरेंडर जो कंप्लीट होता है ना, पूर्ण होता है, खुद को भी देना, इस शरीर को भी देना है। आज से ये मेरा मन, मेरा धन तन सब ठाकुर जी का है, इसको कंप्लीट बोलते हैं। आर्टिफिशियल कृत्रिम भाव से हम कभी कभी करते हैं, सम्मान के लिए दिखाना पड़ता है, नहीं तो मंदिर में हमको निकाल देंगे ना, दिखाना पड़ता है कभी आर्टिफिशियल, इसमें सेवा नहीं होता है, कुछ स्वाद भी नहीं मिलता है। कंडीशनल शर्त, आजकल ज्यादा इसी की शर्त पर चल रहे, कंडीशनल, मुझे अगर इतना इतना फैसिलिटी मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा। क्या ऑफिस है क्या? जिन लोग का स्वार्थ लेने का मतलब है वो भक्त कभी नहीं है, इस जगत में ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। आप सोच लीजिए, आप ये मत सोचिए प्रभुपाद जी ने संग बनाए, कल सुन रहे थे ना हम, वी आर गिविंग फैसिलिटीज ऑफ लजिंग एंड बोर्डिंग फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, सो दैट दे कल्टिवेट इजीली कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इन दिस लाइफ दे कैन रिटर्न बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने इसीलिए संस्था बनाए हैं, इजी क्रेजी लजी, ये तीनों पर्सन के लिए इधर स्थान नहीं, दिस इज नॉट प्लेस फॉर ए इजी पर्सन, इजी गोइंग पर्सन, लेजी पर्सन और क्रेजी पर्सन। आलसी लोग का ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, नुकसान हो जाएगा उनका जीवन में। ये सेवा के अनुष्ठान है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे शर्त नहीं है, शिष्य शर्त नहीं करता है, भक्त से शर्त नहीं करता है, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस, अनकंडीशनल लविंग डिवोशनल सर्विस, शर्त विहीन प्रेम पूर्ण सेवा। बाहर में क्या होता है? सेवा होता है, शर्त युक्त प्रेमहीन सेवा, इधर वो नहीं चलेगा। कंडीशन नहीं है, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, ये तुमको ये फैसिलिटी करना है तो ऑफिस में जाइए, ड्यूटी कीजिए, इधर क्यों रहते हो? इधर कंडीशन कुछ नहीं है, कुछ भी मिले या नहीं मिले बस चलो आनंद में। भक्ति में ठाकुर इसी को ही लिखा है समर्पण में, निजर पोषण कभु ना चिंतीब रहीब भावेर भोरे, निजर पोषण कभु ना चिंतीब रहीब भावेर भोरे, भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे, भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बलिया वरण करे। भक्त कुत्ता है, कभी कुत्ता का ब्रो सुनना चाहिए, पुणे में हुआ था। हमारा स्टैंडर्ड अभी कुत्ता के स्टैंडर्ड में नहीं है, इसे भी गिरा है हम। कुत्ता होना चाहिए, कुत्ता का कितना गुण है आप पता है ना, पंच सिखेत बाय, पांच चीज सीखना चाहिए कुत्ते से। कुत्ता का सबसे बड़ा भाव यही है, समर्पण, निजर पोषण, कभून, कभी खुद का बात समझता नहीं, चिंता नहीं करता, पड़े रहते हैं, मालिक मुझे खाने पीने के लिए व्यवस्था करेगा। कुत्ता जैसा होना चाहिए, सब कुछ छोड़कर कुत्ता देखा है ना, मालिक रहता है अंदर, कुत्ता गेट पर सोता है ठंडी में बरसात में, किसी के लिए, मालिक के लिए। यही सेवा है, यही शिष्य का धर्म, कंडीशनल। और पार्शियल कुछ कुछ करते हैं, कुछ मिलता है तो तब करते हैं, नहीं ये सेवा नहीं है, ये प्रेम नहीं है, भाव नहीं। कंप्लीट होना चाहिए 100% शर्त विहीन, असली सेवा पादरतम विनष्ट, यही है, यही है महाप्रभु ने सिखाया। इस स्तर पर सेवा होता है, शर्त क्या लगाएंगे। ठीक है, और किसका प्रश्न? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो मेरा एक कमेंट है और एक प्रश्न है।
हाँ ठीक है।
मेरा प्रश्न ये, कमेंट ये है कि जो गुरु जी शिष्य सेवा ले रहे थे, जो दो उदंड शिष्य उनको सेवा कर रहे थे, तब बुरी तरह से पैर को इधर उधर हिला रहे थे, बहना डाया इधर उधर, ऐसे उदंडतापूर्वक सेवा करने वाले शिष्यों को उन्होंने त्याग क्यों नहीं किया।
अच्छा।
और कमेंट यह है, अगर वो दोनों शिष्यों के गले में हाथ डाल के अगर घूमने जाते तो पैर उन शिष्यों का ही दुखता था, बस हंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी।
देखिए क्या करना होता है, इसी से हम लोग को एक उपमा जैसा है, ये तो सत्य बात नहीं है। हम लोग को ये अभी क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा ये सेवा अनुष्ठान है, अगर पहला जमाने की प्रिंसिपल अभी हम अडॉप्ट करेंगे, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, अगर मेरा गुरुजी का जो नियम है मैं लागू करेंगे, तुम एक भी डिवोटी नहीं बन सकेंगे। हम क्या करते हैं, अभी हमको जो आचार्य लोग ने दया किए हैं, ये दया का हम फायदा उठाते हैं, हम सीरियस नहीं होते। हमारे गुरुदेव को एक भक्त ने प्रश्न किया था, जैसे आप प्रश्न किए, तो प्रभुपाद जी ने, उन भक्त लोग का पतन हो गया, बहुत प्रभुपाद जी का डिसिपल का पतन हो गया। क्या प्रभुपाद जी को पता नहीं, प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद क्यों संन्यास दे रहे थे उन लोगों को, प्रश्न किया। गुरुदेव ने बोला अरे प्रभुपाद जी को पता है, प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखा है, पढ़िए आप गजेंद्र चरित, प्रभुपाद क्यों संन्यास दिया, प्रभुपाद जी को पता है तुम लोग समर्थ नहीं हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं, योग्यता नहीं है, लेकिन मैं तुमको योग्यता दे रहा हूं, तुमको योग्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोग शिष्य बनने के लिए, हम तो फोर्थ क्लास किए, सब मल किए, हम तो आदेश पालन कर रहे हैं, सेकंड क्लास भी नहीं है, थर्ड क्लास अश्रद्धा में करता है, फोर्थ क्लास बिल्कुल कुछ नहीं करता है। हम लोग को जो गुरुजी लोग जो मंत्र देते हैं ना, तो इसीलिए त्याग करेंगे तो कौन रहेगा, अभी गुरुजी अगर प्रिंसिपल अडॉप्ट करके त्याग करेंगे कौन रहेगा मंदिर में अभी। तो हमको जो फैसिलिटी दे रहे हैं, सुजोग दे रहे हैं कि शुद्ध होने के लिए, आप ये मत सोचिए अगर हम सब निकल जाएंगे तो संस्था नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम चले जाएंगे तो कैसा चलेगा, अरे सब चले जाइए मंदिर चलेगा, ये प्रभुपाद जी का मंदिर है। जैसा एक बैलगाड़ी का नीचे कुत्ता जाता है, बैलगाड़ी का नीचे कुत्ता जाता है तो लोग पूछते हैं ये तुम बैलगाड़ी का नीचे क्यों, मैं बैलगाड़ी को ढो रहा हूं। कुत्ता बैलगाड़ी का ढोता है, नीचे क्यों है, खुद की सुरक्षा के लिए दूसरा कुत्ता आ जाएगा ना मार देगा उनको। वो है तो बैलगाड़ी का नीचे, लेकिन बोल रहा क्या, मैं ढो रहा हूं। तुम ढो रहा हो, खुद की सुरक्षा के लिए तुम बैलगाड़ी का नीचे हो। हम लोग संस्था नहीं चला रहे हैं, बैलगाड़ी इसका हम नहीं चला रहे हैं, चलाने वाले कौन है? प्रभुपाद चला रहे हैं। हम क्या है? कुत्ता है, बैलगाड़ी का नीचे है। थोड़ा बाहर जाएंगे ना, जाओ ना इसका जू सीबीच थोड़ा चले जाओ, तब तो पता चलेगा कितना कुत्ता है, आपको पकड़ लेंगे, पता चलेगा तब। खुद का सुरक्षा के लिए हम इसकन का भीतर है। कभी ये मत सोचिए हम निकल जाएंगे तो संस्था नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये कृष्ण का संस्था है। हमारे गुरुदेव हर समय ये कहा करते हैं, इसकन श्री चैतन्य महाप्रभु मोमेंट। विदेश में बार बार एक चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से शक्ति संपन्न साधु प्रभुपाद जी ने सत्याभिष अवतार ये बनाया है। हमको त्याग गुरु जी ये क्यों नहीं करते हैं, इतना दोष पर क्यों सुरक्षा देते हैं? क्यों? अगर हम ठाकुर जी का अधीन में रहकर भक्ति कर इतना बड़ा कुत्ता बन जाते हैं, कुत्ता से छोटा भी हो जाते हैं, बाहर जाएंगे तो क्या होगा हमारा हालत बताए ना। इधर रहते हमारा प्रवृत्ति शोधन नहीं होता है, बाहर जाएंगे तो क्या है? कर्मी से भी डबल कर्मी बन जाएंगे, ट्रिपल कर्मी बन जाएंगे। हाँ, हमारे शोधन के लिए हमको ये थोड़ा कंसेशन मिल रहा है, लेकिन ये कंसेशन को हम क्या कर रहे हैं? कंसेशन से फायदा उठाते हैं, शोधन नहीं करते। और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट करेंगे तो कौन रहेगा, संस्था चलेगा? आप मत सोचिए, हम लोग का शोधन कैसा होगा? बद्ध जी भी है ना गुरुजी, इसीलिए गुरुजी को पता है ठीक है तो कुछ सेवा करेगा ना, कुछ सुकृत मिलेगा। इसीलिए है तो दोष, फिर भी गुरुजी रखते हैं, ये गुरु का दोष नहीं है। कभी कभी बहुत ऊंचा स्थिति पर गुरुजी का भूमिका को समझ सकते हैं हम लोग, बहुत ऊंचाई भूमिका पर। भक्ति से दंश ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के समय ऐसा एक हालत हुआ था, एक भक्त बहुत दक्ष है और सब सन्यास मिलकर ये बोल रहे हैं कि उसको निकालो, उसको निकालो, नहीं तो हम प्रीचिंग नहीं करेंगे, हम कलेक्शन नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले नहीं, मुझे पता है उनका बहुत दोष है, लेकिन एक दोषी को अगर इधर से निकाल जाएगा तो मेडिकल में है ये रोगी है, मेडिकल से निकल दिया जाएगा तो क्या करेगा, मरेगा ना। तो मैं डॉक्टर हूं ना, कम से कम उनको शोधन करके ही छोड़ूंगा, लेकिन हम तो क्या है, रोगी है, हम तो खुद डॉक्टर बन जाता है। हम लोग तो यही फायदा लेकर खुद ही डॉक्टर सोचते हैं, हम डॉक्टर हो गया, अभी 10 साल हो गया इसका, ना मैं बड़ा डॉक्टर हूं, उपदेशिया गुरु हम हो गए सब, यही हमारा जीवन में हानि है। सेवा हम सुन रहे थे ना, व्यवसाय का बुद्धि क्या है, साध्य साधनम अति न त्यक्तु, मेरा गुरुदेव का आदेश साधन अवस्था है या साध्य अवस्था में, छोड़ना मेरा संभव नहीं, स्वप्न में दूसरा चिंता नहीं, अन्य अभिलाष भी नहीं है, संसार नश्यतु बान नश्यतु, संसार से मेरा उद्धार हो या नहीं हो ये भी चिंता नहीं, ये कितना ऊंचा स्थिति है। तो कभी कभी गुरुजी को पता है हमारा दोष है, लेकिन हमारे कल्याण के लिए आश्रय देते हैं, अगर वो बाहर जाएंगे तो क्या। ऐसा ही हुआ था दिल्ली में, महाराज श्री ने बोला, मैंने भक्त से सुना, मैं दिल्ली गया, महाराज श्री ने बोला देखिए वो त्रुटि किया है, लेकिन उसको निकाल दिया जाएगा तो मंदिर में रहकर इतना भूल करते, उसको मंदिर से निकाल दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो तो कर्मी हो जाएगा, जीवन नष्ट हो गया ना। तो उनको चांस देना चाहिए, सुजोग देना चाहिए, शोधन हो सके, शोधन हो सके, इसलिए गुरुदेव आश्रय देते हैं। ठीक है,
प्रचार करना, और प्रचार करना भी गुरु के आदेश से गुरु सेवा हुआ। तो कभी कभी देखा जाता है भक्त लोग प्रचार करते हैं और अपने गुरु को खुश करने के लिए में दूसरे गुरु का निंदा करते हैं, अंत की मंदिरों में भी ऐसे होता है, तो ये कितना।
नहीं नहीं नहीं, नहीं किसको निंदा करना, सती नारी कभी दूसरा क्या बोलते हैं पति को या कोई पुरुष को निंदा नहीं करता है। हम प्रचार करते हैं गुरुजी के लिए, दूसरे को निंदा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं निंदा। तो ये शब्द दो शब्द भक्ति में नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री में लिखा है, मेरा गुरुदेव ये दो शब्द कभी उच्चारण नहीं किया है, निंदा, कभी ये नहीं करना चाहिए। हमारा गुरु जी को जो सेवा है हम यही करना चाहिए। दूसरा भक्त जैसे सती नारी खुद पति का सेवा में है, दूसरा कोई पति पत्नी क्या कर रहे हैं उसे क्या मतलब है हमारा। लेकिन हमारा इसे एक थोड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड है। हम जब देखते हैं ना वो भी भक्त प्रचार कर रहे हैं, देखकर खुशी होना चाहिए, ठीक है वो भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी महाप्रभु का प्रचार कर रहे हैं। कभी निंदा नहीं करना चाहिए, ये प्रचार नहीं है, निंदा का भी प्रचार नहीं है। हल्ला गुल्ला करना ये बाहर दुनिया, बड़ा होते हैं ना बाहर दुनिया में, इसको मैं बोलता हूं ओरिया में मीडिया वाले क्या करते हैं, बड़ा कैसे होते हैं, दूसरा का दोष प्रकट करके बड़ा होते हैं चैलेंज वाले, किसको पकड़ लेते हैं मिनिस्टर लोग को हल्ला गुल्ला करते बड़ा हो जाते हैं। ये हल्ला गुल्ला करके बड़ा होते हैं, हमारे ये लाइन में हल्ला गुल्ला करके छोटा हो जाएंगे आप। खुद का दोष जितना प्रकट करेंगे आप इतना बड़ा होंगे, और दूसरा का दोष जितना छिपा देंगे ना उतना ही बड़ा आप होंगे। ये हमारा पथ है खुद को दोषी करने के लिए। देखिए आचार्य लोगों ने क्या नहीं लिखा है खुद का भजन में, अमित दुर्जन सदा दुराचार, कुटी कुटी जन्मे मोरो नहीं तो निस्तार। क्या वो दुर्जन है भक्ति विनोद ठाकुर? मेरे तो नरेश ठाकुर दुर्जन है, हमको सिखा रहे हैं खुद का दोष प्रकट करो, दूसरा का दोष को छिपा दो। हम लोग प्रचार करना है लेकिन दूसरे को निंदा नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। राम रघुवंश सीता हनुमान जी महाराज की जय। संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।